नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में शामिल होने वाले कुल उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष मार्च में 2,17,00,000 तक पहुंच गई है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित ये योजना सेवानिवृत्ति के बाद नागरिकों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रबंधन को परिसंपत्तियां एनपीएस के तहत लगभग 16,00,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी 8,96,00,000 से अधिक हो चुकी है। इस योजना का शुभारंभ मई 2015 में किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने वाले स्पीति घाटी के लोसर गांव के युवा खिलाड़ी तंजिन तशी को सम्मानित किया। गौरतलब है कि भारतीय टीम में हिमाचल से शामिल एकमात्र खिलाड़ी तंजिन तशी ने प्रतियोगिता में कई शानदार गोल किए और चीन के खिलाफ मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
मुख्यमंत्री ने तंजिन तशी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए 2,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तंजिन तशी जैसे खिलाड़ी प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और सरकार आइस हॉकी सहित शरतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। इस दौरान ये भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से काजा में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से आइस हॉकी स्टेडियम और 8 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। दोनों परियोजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है और इस वर्ष कार्य शुरू होने की संभावना है। पीटी के इस होनहार खिलाड़ी की उपलब्धि से पूरे हिमाचल में खुशी का माहौल है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के कर्मचारियों से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का वायदा किया था और इसे अपनी प्रमुख गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासनों पर विश्वास करते हुए बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने ओपीएस को चुना, जबकि कुछ कर्मचारियों ने एनपीएस में बने रहने का निर्णय लिया। सिकंदर कुमार ने कहा कि आज स्थिति यह है कि एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की दरों के अनुसार लगभग 60% डीए दिया जा रहा है, जबकि ओपीएस कर्मचारियों को राज्य सरकार की दरों के अनुसार केवल 45% डीए मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समान पद, समान कार्य और समान जिम्मेदारियों के बावजूद कर्मचारियों के बीच इस प्रकार का अंतर पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज शिमला में शुरू हुआ। कोटशिरा कॉलेज शिमला और देशभक्त यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। उन्होंने सम्मेलन को आज के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, जो सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।
जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस है, हिंदुस्तान कैसे उसमें उभरता हुआ इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, वो सारे टच होंगे। यहाँ पर जो एक्सपर्ट आए हैं, तो मुझे विश्वास है कि ये जो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, ये अपने आप में सक्षम होगी, इनोवेटिव होगी और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हुए एक्सपर्ट इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
सम्मेलन में विशेषज्ञ वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, पर्यावरण व तकनीकी सहित सभी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे, ताकि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और दैनिक खर्च चलाने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है, जो इस सरकार की विफल आर्थिक नीतियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास न तो आर्थिक दृष्टि है और न ही वित्तीय प्रबंधन की कोई स्पष्ट नीति। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय केवल महंगाई बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की आवाज उठाती रहेगी और कांग्रेस सरकार की जनविरोधी, आर्थिक रूप से विफल और पक्षपातपूर्ण नीतियों को लोगों के बीच उजागर किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।